ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें मुझसे कुछ नहीं बोलना। क्या मतलब? मुख से कुछ भी नहीं बोलना। क्या मतलब इसका? मुख से क्या नहीं बोलना? बोलेंगे नहीं, गूंगे सुना है? हाँ जी, हाँ, बाबा बाबा, शिव बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, कुछ नहीं बोलना। अपनी खुशी को अपने अंदर अनुभव करो, और ये देव से निकलेगा तब जब हमें बाबा की श्रीमत पर चलने से कोई फायदा होगा। मतलब जिसका कहना मानने से, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, जिसका कहना मानने से आपको लाभ होगा, आप उसके प्रति देव से थैंक यू करेंगे। जिसके कहने से हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ, नहीं, देखो बाबा निकले, ठोकर लगी, बाबा याद आया, अच्छी बात है, परंतु बाबा कहते मैं याद आया हूँ तब जब आपको ठोकर लगी, आपको कोई दुख पहुंचा, आपको कोई कष्ट पहुंचा, आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, तो अब आप मेरे पास बैठकर उसका सॉल्यूशन करो। जैसे मैं कहता हूं वैसे समाधान करो। हाँ मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, या बात सारी यही है। इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे को याद करो, माना मेरा कहना मानो। जो भी समस्या आपके पास आई है वो मेरी श्रीमत, नहीं, यही तो बाबा समझा रहा है। आप मेरा बाबा ऊपर से तो कह रहे हो, हाँ आप ऊपर से कह रहे हो, पर तो अंदर से, हाँ अंदर से मैं बताता हूँ ना, अंदर से का मतलब है कि मैंने जो भी समस्या आई है, जो भी समाधान करना था, वो मैंने बाबा की श्रीमत पर किया, या अपनी मन मत पर किया, या किसी दूसरे से पूछ कर किया। बात सीधी सी समझनी है, मैंने हर बात का समाधान बाबा जैसे कहता है वैसे करना है। देखो बाबा, आपने देखिए, आपने जो भी प्रश्न किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बाबा ने भी स्वार्थ शब्द के बारे में कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दी, परंतु मैं आपको स्वार्थ का अर्थ बता रहा हूँ। क्यों नहीं दी बाबा ने और क्यों मुझे बताना पड़ रहा है? क्योंकि आम व्यक्ति स्वार्थ का अर्थ नहीं जानता। स्व के लिए, स्व अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व अर्थ, स्व के लिए, अपने लिए। और अब जितनी भी दुनिया स्वार्थ को जानती है वो ये जानती है, मतलब अपने लिए, मतलब शरीर के लिए और शरीर के परिवार के लिए जो काम करते हैं ये स्वार्थ है। परंतु आज आप थोड़ा ध्यान से देखें, स्व माना आप कौन? आप एक आत्मा है। मैं कहता हूं स्वार्थी सारे बने तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। आप आत्मा के लिए करना शुरू करो तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, परंतु आप करते हो देह के लिए, जिसके लिए बाबा ने मना किया। इस देह के लिए, देह और देह के सब संबंधियों को भूल, मुझ एक बात को याद करो। मतलब देह के लिए नहीं करो, ध्यान रखना है, देह के संबंधियों के लिए नहीं करो, सिर्फ स्व अपने लिए, आप आत्मा के लिए करो तो क्या होगा? आत्मा का कल्याण किस में है? आत्मा का कल्याण बाबा की श्रीमत पर है। और बाबा की श्रीमत की दो ही छोटी सी लाइनें हैं, दो छोटी सी लाइनें, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। ये दो छोटी सी लाइनों में सारी सारी बात बाबा कह देता है, इन दो 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 छोटी सी लाइनों में। क्योंकि मैंने यदि किसी को दुख दिया तो वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। वो कहानी में तो आता है, परंतु जब आती है बात मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, वो यदि मैं उसको यही ये जब तक लगाता है, ध्यान दीजिए लगाता है, परंतु यही सबसे बड़ी मिस्टेक है समझने में। जहां आपने मेरी दे, मैं उसको गोली नहीं मारूंगा तो वो मेरे को गोली मार देगा, इसलिए उसकी गोली चलने से पहले मैं उसको मार दूं, मैं उसका मार दूं। ये है बॉडी कॉन्शियस, ये है बॉडी कॉन्शियस। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता यदि आपने उसे कोई दुख दिया हुआ नहीं है। इस भय से पहले अपने आप को मुक्त करो, वो ज्यादा से ज्यादा गोली मारकर तुम्हारे शरीर को खत्म कर सकता है, परंतु तुझ आत्मा का तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये है बाबा की श्रीमत। अब बाबा की श्रीमत को समझना और उसके अनुसार चलना, ये है बाबा को याद करना। खाली बाबा बाबा तो कहते रहे, हम भक्ति मार्ग में यही तो कहते आए, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी उन्होंने हमें नाम दिया, परंतु जो भी उन्होंने बताया करने के लिए उसको तो हमने कभी सोचा ही नहीं, उसका तो हमने कहना माना ही नहीं। गीता का भी कहना मान लें तो गीता के अंदर 50% तो ऐसी अच्छी मार्गदर्शना है, उस पर भी चले तो दुनिया में शांति आ जाए, परंतु गीता पर भी कोई नहीं चलता। किसी धर्म को कोई धर्म नहीं कहता कि तुम किसी को मारो, तुम किसी से लूटो, किसी को धोखा दो, किसी को बेईमानी करो, किसी को कष्ट दो।
तो वहाँ पर जो मोटिवेट करने के लिए भाषण जो किया ये स्वतंत्र दिवस के ऊपर, उसके अंदर भी पहला सब यही था कि कितने भी आप जो है सामने आ जाए, लेकिन जब तक बात नहीं करता आप बात, यदि वो हरकत करता है तब आप हरकत में तैयार हो, उसकी गोली आती थी एक चला से फिर तैयार चला, तो
भाई जी आप जिस सेना में भर्ती हो वो सेना देहधारियों की है, और आप गलती से इस सेना में भर्ती हो गए हो जहाँ आत्माओं की सेना है, बहुत बड़ी गलती की है। वो है देहधारियों की सेना, ये आत्माओं की सेना। अब देहधारियों वाला भाषण आत्मा की सेना में करोगे तो कैसे काम चलेगा?
आत्मा से काम ही नहीं चलता, वहाँ तो अज्ञान चाहिए मेरे भाई।
बस समझे नहीं बात,
आत्मा दिखाई नहीं देती, किसी को कहाँ है आत्मा?
अब दिखाई देती है या नहीं देती, अब आपने एडमिशन जिस स्कूल में लिया है नियम तो उस स्कूल के लागू होंगे।
अरे यही
गलती तो यही कर दी दी, और ऐसा बाबा हमें मिल गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा अब हमें समझ में आया स्वार्थ, अब स्वार्थ, अब हमें स्वार्थ का मतलब समझ में आ गया आत्मा के लिए, है नहीं? इसलिए बाबा ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि स्वार्थी बनो, नहीं तो बाबा पहले स्वार्थ का अर्थ समझाए और आगे बैठे हुए बच्चे अर्थ ना समझें और बाबा कह दे स्वार्थी बनो और वो अपने मतलब से उसका अर्थ ले ले कि बाबा ने कहा है स्वार्थी बनो। इसलिए बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे जो बात नहीं समझ सकते उनको अभी एक्सप्लेन नहीं करो, तो इसलिए हमें समझना है कि हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है, यही बाबा को याद करना है सच्चे दिल से। किसका दिल? शरीर का दिल नहीं, आत्मा के दिल से एक बात को निरंतर याद करना है। आत्मा का दिल क्या होता है? मन भी वही कहे जो बाबा कह रहा है, बुद्धि भी वो कहे जो बाबा कह रहा है, हमारे संस्कार भी वो हों जो बाबा कह रहा है। ये तीनों एक मत हो जाए, इसको कहते हैं दिल। सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो बाबा के साथ सच्चा है उस पर शिव बाबा राजी होगा, जो गवर्नमेंट के साथ देहदारियों के साथ सच्चा होगा उस पर देहदारी राजी होगा। अब आपने देहदारी को राजी करना है कि बाप को राजी करना है, ये आपने फैसला कर लेना है। प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर, सबसे अच्छा चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? कौन से देवताई मैनर को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना, सदा खुश रहना है। बहुत अच्छा मैनर है ये, खुश रहने वाला। कोई कुछ भी कर दे, आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु आपकी खुशी गायब ना। देवता सदा हर्षित रहते हैं क्योंकि आप आत्मा हो। आप फिर भी उसे क्या देंगे? दुआ देंगे। जैसे आपने देखा कि भीष्म पितामह भी अर्जुन को दुआएं ही देता रहा, परंतु वो उस स्टेज पर आ चुका था तब खिलखिलाकर हंसते नहीं। आप हंसे खुश रहे परंतु आपके दांत नहीं दिखाई देंगे। हाँ, दांत निकलवा दो मीन्स आपने मुस्कुराना है परंतु हंसना नहीं है। मुनि को ना, वो बद मतलब गलत नियम है। मतलब वो एक किस्म के किसी के ऊपर व्यंग्य करते हैं, ठाका लगाते हैं, मतलब उसको चिढ़ाते हैं, उसमें उसके कारण किसी दूसरे को दुख पहुंच सकता है। परंतु देवताओं को आपने देखा होगा, उनके दांत नहीं दिखाई देते परंतु वो खुश दिखाई देते हैं, मुस्कुराते ऐसे, क्योंकि आप वो देवता बनने जा रहे हो, आपके पास भी वही मुस्कुराहट हो परंतु दांत नहीं दिखाई दे। हंसना भी एक विकार है। हाँ, जैसे काम, हाँ जी, हाँ, रावण जैसा हंसने, मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए हंसना, व्यंग्य करते हुए हंसना। हाँ, तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए, मतलब जिस हंसी से किसी दूसरे को दुख पहुंचा, हाँ, वो हंसी नहीं करनी। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक होता है। ये फैमिलियरिटी होती है अपनी परिवारवाद में आना, ये मेरी बिरादरी का है, ये हमारे सेंटर का है, हमारे एरिया का है, मेरे परिवार का है, मतलब ये जो है ना फैमिलियरिटी है, ठीक नहीं, इसमें नहीं आना। अपना है ना, इसने मेरा भला किया था, चाहे वो अजनबी है, मैं उसको जानता नहीं, परंतु आपने उसने आपका भला कर दिया, अब आप उसके प्रति अपने आप को ऋणी महसूस करते हो, अब वो आपको पाप करने के लिए कहता है कि तेरे इसके लिए तो करना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरे लिए किया है। उसने आपके लिए पाप किया, आपने उसके लिए भी क्या किया? पाप किया। नहीं, ऐसी फैमिलियरिटी में नहीं आना है, ये बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो बीके हो, चाहे कोई भी हो, बाबा की श्रीमत पर है तो ओके, नहीं तो नहीं। मतलब किसी भी प्रकार की फैमिलियरिटी में आकर हमने गलती नहीं करनी। ये हमारे सेंटर का भाई था ना, इसके लिए मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला भाई तूने? युक्ति लगाना अलग बात है, युक्ति कई भाई बहने कहते हैं, बाबा कहता है झूठ बोलो युक्ति से। युक्ति तब काम करती है जब किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। युक्ति का मतलब है ये हमें युक्ति में ध्यान रखना है। मुझे यदि झूठ बोलना पड़ा है कोई बात नहीं, परंतु झूठ बोला उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा। यदि झूठ बोलकर मैंने इसको तो सुख दे दिया पर तो उसको मैंने दुख पहुंचाया तो वो युक्ति युक्ति नहीं है, वो युक्ति युक्ति नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना है। अनासक्त वृत्ति चाहिए, नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, इसी धारणा से जब सर्विस करते दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहे, चेहरा हर्षित रहता है। धारणा से जब सर्विस करते तो आपका क्या रहेगा, चेहरा हर्षित रहता है। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं तो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, दिल भी कहाँ है, आत्मा में है। तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जप साहेब को, जप जी साहेब एक गुरु ग्रंथ गुरुद्वारे का गुटका है छोटा सा, जप साहेब तो सुख मिले। दूसरी किताब है छोटा सा गुटका सुखमणि, जप जी साहेब सुखमणि। बाबा कहते जप साहेब को याद करो साहेब को तो तुम्हें सुख मिलेगा। परंतु बाबा की जप का अर्थ ये नहीं, हाँ मुख से कुछ बोलते रहो नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है, किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसी को भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वे नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते बस। और कहां बुद्धि नहीं जाती, बल धंधा दोरी भी करते हैं परंतु दिल एक के साथ रहते। ये नहीं कि दिल कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, मतलब शरीर से भी अपवित्र गलत काम नहीं करते और बुद्धि से भी अपवित्र काम नहीं करते। उसका भी गायन है परंतु ऐसे बहुत थोड़े, ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े, इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ ले, क्या करती है, नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा देखो देखें ये हिलता है वा नहीं, जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती, जैसे चूहा काटता है। फूंक ऐसी देता है जो पता पत्ता भी नहीं पड़ता, ऐसी फूंक मारता है मतलब दर्द नहीं होने देता, मतलब इतना उसमें एक समझो के समो क्या सुन करने वाली फूंक होती है वो, कि वो जगह सुन हो जाती है, वहां दर्द नहीं होगा चूहा काटेगा नहीं। काटा है ना, मतलब हमारे मम्मी को मदर को एक तो शुगर थी और उनको चूहे ने काटा, उनको नहीं पता, दो कारण हो गए वहां पर। एक तो शुगर वाले पेशेंट को भी दर्द महसूस नहीं होता, और शुगर के शुगर पेशेंट को यदि हार्ट अटैक आए, उसे साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, उसे भी दर्द नहीं होता, क्योंकि शुगर के कारण उन्हें दर्द की महसूसता नहीं होती है, उनको साइलेंट अटैक आता है। शुगर के पेशेंट का दर्द वाला अटैक नहीं आता, वो उसके दर्द को ऐसे लगता है जैसे हल्का फुल्का है, ठीक है। सांप का तो खैर अलग है, मतलब सांप का तो नींद आ जाएगी, सांप काटेगा ऐसे महसूस होगा जैसे सुई लगी है, पर तो उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा और वो सो जाएगा, और सो जाएगा तो वो मर जाएगा यदि वो जहरीला सांप है तो। नहीं होता, हाँ बिच्छू का दर्द बहुत ज्यादा। ऐसा है कि यदि उसका देखो चूहा काट लिया, काटने का दर्द होगा, परंतु उसके बाद वो फूका मार देता है, उसका फूका लग गया तो फिर दर्द नहीं होगा, वो पहले भी फूका मारेगा। आपने चूहा यदि आपके पास आया होगा तो उसका आपने फूका हवा जो है ना आपको सांस की जो है ना उसके वो आपको महसूस होती है और वो उससे जगह को सुन कर देता है, फिर वो उसको काटता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए, बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए, बाप में पूरा पूरा लव चाहिए, तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर, बिल्कुल जरा भी आसक्ति नहीं हो ये मेरा है, भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे तुमको ऐसे नहीं कि उनका नाम उनके नाम रूप में फंस पड़ो, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो, तुम शिव बाबा के बनते हो, वे तुमको स्वच्छ बनाते हैं, विकारों को निकाल देना, कोई विकार अपने अंदर नहीं हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां, तुम्हारा नाम क्या है शिव शक्तियां, तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह से उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है, निरंतर याद करना आसान काम नहीं है, भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है, क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा, फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है, ये तो है ज्ञान की बात, इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं, कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते, रेगड़ी पहनना किसको पता है, कभी बच्चे को रेगड़ी पहनते हुए देखा है
क्या?
रेगड़ी छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, घुट बल चलते हैं, उसको रेगड़ी कहते हैं, रेंग रेंग कर रेंगते रहते हैं, पहले तो ऐसे हाथ मारेगा इधर, बस बेचारा छोटा बच्चा है नहीं, ऐसे मतलब चलते हुए ज्ञान में 20 साल हो गए 25 साल हो गए, परंतु अभी तक वो फुटबॉल चल रहा है, सुधार नहीं ला रहा है अपने अंदर। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं, बाबा के श्रीमत पर चलते नहीं, बड़ी युद्ध चलती है, बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, ऐ शरीरी बनने में मेहनत लगती है, बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते, कहने में लज्जा आती है, माया बड़ी दुष्कर है, एकदम माथा मूड़ लेने में देरी नहीं रहती, माथा मूड़ ना माना ऐसे कर्म करा देना जिसके कारण बेइज्जती हो, ऐसा नहीं ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियां भी बतलाई जाती हैं, पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर नंबर वार पद पाना है। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है, बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष, मतलब परोक्ष हो गया पीछे छुपा हुआ, अपरोक्ष मतलब सामने। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है, जैसे का कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसे लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना। आज की दुनिया में तो ऐसे सोचते हैं बस अब मेरा बचने के चांस नहीं, और वहां सोचते हैं अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, अब इसको छोड़ना है, अब जाकर नया शरीर ले। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते, आत्मा खुशी से शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल। वहां पर सतयुग में आत्मा का ज्ञान पूरा है यानी, और फिर जो है ना शरीर को छोड़ दे। बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं तो फिर कैसे छोड़ेंगे, ड्रामा में है ही नहीं, वे बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं। यहां तो दुख में मनुष्य याद कर सतयुग के अंदर बाबा का पता ही नहीं है वो बाबा क्या है, परंतु उनको आत्मा का ज्ञान पूरा होता है। और यहाँ आत्मा के ज्ञान को तो सारा भुला दिया, अब सारा क्या है, देह की ही याद है, देह और देह के संबंधियों की याद है। और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ अब बाप से योग लगाना है, अर्थात बाबा की श्रीमत पर आत्मा के ज्ञान को अच्छी तरह समझना है और फिर उस पर चलना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए, इस शरीर से क्या आनी चाहिए, नफरत। ये नहीं कि अब इसको खाना नहीं खिलाए, पानी नहीं पिलाए, इसको नहलाए नहीं, धुलाए नहीं, क्योंकि शरीर से मुझे क्या आ गई है, नफरत आ गई। नहीं, नफरत का मतलब है शरीर का कहना नहीं मानना। ये जो मांगे उसके लिए पहले बाबा से पूछना है, दूं इसको, बाबा कहे दे दो तो दे दो, बाबा कहे नहीं तो नहीं, ये है नफरत। बल कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो, लेकिन लामूजब तो सब काले, लामूजब मतलब नियम अनुसार, अब किसी कारण बहुत गोरा, पर तो लामूजब तो सारे के सारे पतित काले, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है, शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते ना, ये तो हवा पानी पर निर्भर होता है, जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफेद मनुष्य होते हैं। तो जब बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है, किसके साथ, शिव बाबा के साथ। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता, जब आपकी लव मैरिज शिव बाबा के साथ हो जाती है फिर आपको इस शरीर से भी लव नहीं रहता, क्योंकि प्यार किसके साथ हो गया, और किसका प्यार हो गया, आत्मा। अब आत्मा किसी और से कैसे प्यार करे, पतिव्रता है। रटना नहीं है, मतलब
हर लाइन में बाबा आ रहा है, ये रटा क्या है,
ये बाबा कह रहे हैं कि बाबा की श्रीमत ये है, बाबा की श्रीमत ये है और ये बाबा की श्रीमत नहीं है। मतलब ये बाबा समझा रहे हैं क्या मेरी मत पर चलना है, क्या मेरी मत पर नहीं चलना है। बाबा की पढ़ाई यही है, मेरा कहना ये है, दुनिया वालों का कहना ये है, अब मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता हो गया, अब मेरा कहना मानो। याद करो का मतलब याद रखे, कहना मानो। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल भी चलते हैं, कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है। हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है, ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है, अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर के साथ। कहता है मुझे पसंद हो, तुम कितने भी काले हो, बस तुम मेरी सजनी बन जाओ, मेरा कहना मानने वाली बन जाओ, तो बस मुझे तुम पसंद। बाकी दुनिया वाले पसंद नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे गोरी चाहिए, परंतु मेरे को काली पसंद हो। परंतु ना हाँ जानते हो वो गोरा है, उसके लिए नहीं बोल देना मैं गोरा हूँ, मेरे लिए काली शब्द यूज नहीं करना, ये बाबा के लिए काल नहीं करना। वो तो दुनिया वाले ऐसे बोल देते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण को काला दिखाते हैं, पर तो शिव बाबा काला थोड़ा है, कृष्ण का कृष्ण काला हो जाता है, शिव बाबा तो परमानेंट गोरा है। किसको गोरा मुसाफिर से, गोरे मुसाफिर से तुम्हारी क्या हो गई है, सगाई हो गई है। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली है, काली ही काली है, गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनना है। अब संबंध जोड़ लिया है तो अब गोरा बनना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। जैसे शादी हो जाती है तो कुछ सालों बाद पति पत्नी एक दूसरे से शक्ल मिलने लगती है ना, देखा है कभी आपने होता है? हाँ जी, मतलब आप पहचान लेते हैं कि ये उनकी पत्नी ही होगी। मतलब आपने, मतलब आप पहली बार यदि किसी के घर जाएं, आपने उसकी वाइफ को कभी नहीं देखा, उसको फोटो भी नहीं देखा, तो उसको देखा है तो आप उसके घर जाएंगे तो पहचान लेंगे कि ये उसकी वाइफ होगी, दस में से भी पहचान लेंगे। बाकी कोई कोई ना मिले वो एक अलग बात है, भले आपको झलक मिल जाएगी उसकी चाल से, उसकी बोल से, उसकी बातों से पता लग जाएगा कि ये उनकी पत्नी है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी यदि आप सुधरे नहीं और काले रह गए, एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, हाँ बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम तो माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, ये है भट्टी। बाप के साथ योग लगाना और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे, योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी, और जितना ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे उतनी धारणा भी होती जाएगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है, योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते, योग के बिना अपने को या भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। बस सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ। किससे? बाप से। कोई भी विकर्म ना बन जाए, अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया और कब बनाया, ये तुम जानते हो। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं, सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनता है, जगदम्बा का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, फिर जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वे तो निराकार है, निराकार की पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे। परंतु जानते नहीं, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान अपने आप को आत्मा समझे, तब नशा पूरा रहेगा। देह समझ लिया तो नशा नहीं आ सकता, फिर तो सिर्फ रोएगा। देह समझा तो रोएगा, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरे बच्चे खराब, मेरा वो खराब, मेरा वो खराब, ये रोना है। जब हम दूसरों को दोष दे रहे हैं तो ये क्या है? रोना। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, बाबा की श्री मत पर चलना है, उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। माची का घर नहीं है ये। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, माया के ऐसे भूत आएंगे कि बाबा को बाद में याद करेंगे, पहले इससे निपटेंगे। इस ये जरूरी है, ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते, झट ट्रेटर बनकर बिगड़ पड़ते हैं, वे फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भगंती हो जाते हैं, डिस सर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं, ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष, विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं, कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं है। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है, बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं, कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं, योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घाव घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब हैं। चलन से झट मालूम पड़ जाता है, क्या मालूम पड़ जाता है, ये तो जैसे रीढ़ है। क्या होता है भेड़ का, भेड़ को कितना भी कुछ कहो वो अपनी ही तरफ जैसे एक भेड़ जा रही होगी उसके पीछे पीछे चल गिरे। हाँ वो सोचे कि यही थी। हाँ मतलब कहने का यह है कि जहाँ देखेंगे ना ये बाबा बागेश्वर की तरफ जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, एक वो क्या बोलते हैं खाटू श्याम जा रहा है तो मैं भी खाटू श्याम जाऊँ, एक ब्रह्मा कुमारी की तरफ जाए तो ब्रह्मा कुमारी की तरफ चल पड़ेंगे। मतलब जो जिधर जाते हुए देखते हैं उधर चल पड़ते हैं, वो होते हैं भेड़, है ना। और फिर आ तो जाते हैं, उन्हें समझ में कुछ नहीं आता। वो भाग्य है कि किसी किसी को ऐसे ही आ गए और समझ में आ गया। कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, हाँ तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। ये आत्मा तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाए क्या करो, मुझे एक बाप को याद करो। तुम याद नहीं कर सकती, तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है भाई। बाबा पूछ रहे हैं मुझे याद करने में क्या मुसीबत है, कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवां बैठेंगे बैठोगे तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े कभी भूलना होता है, दे अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आगे, अंदर सिमरन करना है, आर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है, शरीर का आधार लेना है, परंतु अंदर से आत्मा समझ बाबा की श्रीमत पर चलना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उसका ही कहना मानना है, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, पवित्रता का ताज आपको मिलेगा, सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। संसार के ज्ञान को जानेंगे तो रतन जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्म राज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, खुशी भी कैसे चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है, हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वे गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिल खिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वे भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वे आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, बस आपकी बुद्धि में क्या रहे, सेवा करनी है, बस सेवा करनी है। सर्विस मिली और ये भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो, बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं, ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा वर्षा विकर्मा जीत बनेंगे, बहुत सहज बताते हैं याद करना है। और सुदर्शन चक्र फिराना है, याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते, पहले नहीं बन सकते, नंबर वार, क्योंकि रिजल्ट तो लास्ट में निकलेगा ना। आज सुधरे, कल बिगड़ गए, फिर सुधर गए, और अच्छे चले, और अच्छे चले, तो इसलिए लास्ट तक आपको चांस है कि कितना अच्छा सुदर्शन चक्रधारी बनो, अर्थात अपने बुराइयों के गले को काट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी। भोजन पर याद में रहना है। भोजन पर याद में रहने का मतलब क्या है? बाबा की श्रीमत अनुसार खुश होकर, आनंद होकर, जो भी मिला है वो कोई शिकायत नहीं हो, कोई प्रश्न नहीं हो। हाँ, आज शरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना, अपनी देह से भी लव नहीं रखना है। नंबर दो, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। ज्ञान योग में क्या रहना है? मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले, अविनाशी राज तिलकधारी, तिलक अधिकारी। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, बेपरवाह बादशाह। कौन सा राजा बनाया? ये कितनी अच्छी स्थिति है, कोई परवाह नहीं। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको, किसकी, किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रखा है। अगर श्री मत पर हैं तो आप बाप हवाले, श्री मत पर हैं तो बाप हवाले हैं, ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य माँ वाक्य को, मतलब आप कम से कम बोलेंगे, जो बोलेंगे वो एक महावाक्य बन जाएगा। कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9296509227 पर केवल टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप नहीं। ओम शांति।